नमो लोई सव अरहंताण नमो लोई सव सिद्धाण नमो नमो लोये सव अध्यायाणम् नमो लोये सव त्रिकालवर्ती साहूणम् इस सुरासुर मनुसिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारं सर्वव्याप्येत चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो सद्गुरु भगवन। प्रवचन सार में द्रव्यगुण पर्याय का बड़ी गहराई से मंथन किया गया है। उसमें भी तीनों अध्यायों में थोड़ी थोड़ी चर्चा सब जगह आई है। जैसे पहला अध्याय जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, उसमें 80 नंबर की गाथा से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है द्रव्यगुण पर्याय का। वो 92 नंबर की गाथा माने पूरा अध्याय समाप्त होता है, वहां तक इसकी चर्चा चली है। उसके बाद में द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा तो ये तत्व प्रज्ञापन की जान है, उसकी आत्मा है। ये तत्व प्रज्ञापन में 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर की गाथा तक सामान्य द्रव्य निरूपण नाम का अधिकार है और उसमें बहुत विस्तार से द्रव्यगुण पर्याय की बड़ी सूक्ष्मता से अथो खलु दवमो दववाणी गुणपगाणी भणिगाणी तेहिं कुण पज्जाया पज्जय मूढ़ाही पर समया जे पज्जयेषु निर्दा जीवा पर समय गति निदिथा आद सहावम मिथिदा ते सग समया मुणे दब्वा। ऐसी उसमें गाथा पहले ही से बिल्कुल स्टार्ट से लगभग मतलब 26 और 8 34 गाथाओं में बहुत विस्तार के साथ में द्रव्यगुण पर्याय की सूक्ष्मता का वर्णन है। इसी के आधार पर जो पंचाध्यायी का पहला अधिकार लिखा गया है, जिसमें द्रव्यगुण पर्याय की विस्तार से चर्चा है, वो पंचाध्यायी का भी मूल आधार ये प्रवचन सार की यही गाथाएं हैं 93 से 126 की। इसके बाद में जो इसी ज्ञान के तत्व प्रज्ञापन का जो अंतिम प्रकरण है ज्ञान के विभाग के नाम से, उसमें भी द्रव्यगुण पर्याय के माध्यम से भेद ज्ञान की चर्चा है। जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी 80 नंबर से गाथा से प्रकरण चला है द्रव्यगुण पर्याय का चला है, लेकिन उसके माध्यम से भेद ज्ञान की चर्चा की है। इसी प्रकार से वहाँ ज्ञान के विभाग में भी भेद ज्ञान को आधार बनाया गया है और चरणान योग जो सूचक चूलिका है उसमें भी प्रारंभ में ही जब दीक्षा लेने को वो दीक्षार्थी जाता है और उससे आचार्य परमिशन लाने को कहते हैं, जाओ तुम घर से परमिशन लेकर के आओ, तो वो जब जाता है तो वो आचार्य देव से कहता है कि आप कह रहे हो कि जाओ माँ से पूछ के आओ, पिताजी से पूछ के आओ, उनसे छूट के आओ, तो बोले कौन मेरे को परमिशन देगा, कौन मेरे को परमिशन देगा, ऐसे कोई मैं बोलूंगा मम्मी मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ तो क्या ऐसे मम्मी परमिशन दे देगी, पिताजी से कहेंगे, भाई से कहेंगे, और पत्नी वो तो जान ले लेगी, वो कैसे परमिशन दे देगी कि जाओ, हाँ बहुत अच्छा विचार किया तुमने, जाओ दीक्षा, पहले क्यों नहीं चले गए, ऐसा कहेगी पत्नी, बच्चे कैसे परमिशन दे देंगे। तो उसमें वो आचार्य महाराज, ये थोड़ा सा नमक मिर्च में लगा के बात कर रहा हूँ, आचार्य महाराज ने जब ये कहा कि जाओ पूछ के आओ, छूट के आओ, तो उसने आचार्य महाराज से पूछा कि आप कोई मेरे को तरीका तो बताओ कि जिस तरीके से मैं उनसे छूट के आ सकूंगा, उनसे परमिशन ला सकूंगा, आप कोई तरीका तो बताओ। तो आचार्य ने उसको कान में एक मंत्र फूंका, आप बता सकते हो वो कौन सा मंत्र था? वो जो मंत्र है वो भेद विज्ञान का मंत्र है कि तुम इस भेद ज्ञान के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से तुम अपने माता पिता से बात करना तो वो माता पिता तुमको परमिशन दे देंगे, ऐसा आचार्य को विश्वास। क्या भेद विज्ञान आपको समझ में आया? कैसा भेद ज्ञान, कैसा भेद विज्ञान का मंत्र, क्या कहा होगा उसने अपनी माँ से? आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने उसके बोल भी बताए हैं टीका में कि तुम उनसे ऐसे कहना, कैसे कहना, ऐसा नहीं कहना जल्दी जाओ और दौड़ते दौड़ते घर में और मम्मी 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 मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कहना, फिर कैसे कहना। तो उसने भेद ज्ञान के माध्यम से अपनी बात कही, हे मेरे इस शरीर की माता के, मेरे इस शरीर की माता के आत्मा, क्या ये भेद ज्ञान के मंत्र हैं? मैंने मेरी माता नहीं, मेरे संयोग में जो ये शरीर है उसकी माता, और उसकी माता भी तुम नहीं हो, कौन है? तुम्हारा जो ये शरीर है, तुम्हारा जो ये शरीर है वो इसकी माता है। और ऐसे कहना कि हे मेरे इस शरीर की माता के आत्मा, तुम मेरी माता नहीं हो, तुम मेरी माता, तुमने मेरी आत्मा को जन्म दिया है क्या? मैं तो आत्मा हूँ, तुमने मेरी आत्मा को जन्म दिया हो तो तुम मेरी माता कहलाओगी, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को जन्म दिया नहीं है, इसलिए तुम मेरी वास्तव में सच्ची माता नहीं हो। मैं अपनी अनादि माता के पास में जाता हूँ, क्या बात है, वो कहता है मैं अपनी अनादि माता के पास जाना चाहता हूँ, तुम मुझे आज्ञा दो, आज्ञा दो नहीं बोला किरीट भाई, क्या बोला मालूम, तुम मुझे छोड़ो, जी भाषा बोली, आपिच्छ बंधु वग्गम विमोच दो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसिद्य नान दंसन चरित्र नान दंत चरित्र तवीरिया यारी, क्या बोल रहे, आपिच्छ बंधु वग्गम, बंधु वर्ग से पूछ के आना, और माता पिता से, माता पिता से पूछ के आना नहीं, माता पिता से छूट के आना, आपिच्छ बंधु वग्गम, बंधु वर्ग से पूछ के आना, और विमोच दो, विमोच दो गुरु कलप्त पुत्ते ही, गुरु जो माता पिता, कलप्त माने जो स्त्री, पुत्ते ही माने जो पुत्र, जो बिल्कुल बहुत निकटवर्ती हैं बाह्य में, उनसे छूट के आनो, विमोचित हो, उनसे विमोचित होकर के आना। ऐसे ये भेद ज्ञान के सूत्र वहां भी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 201 नंबर 202 नंबर की जो गाथा है चरणान योग सूचक तुलिका के बिल्कुल प्रारंभ की गाथाएं, वहां पर भी ये भेद ज्ञान के सूत्र उन्होंने दिए हैं। आगे भी जगह जगह पर ये भेद ज्ञान के सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और ये देखने की बात है कि अधिकांश जगहों पर जहां जहां भेद ज्ञान की चर्चा आचार्य ने उठाई है, वहां पर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी साथ में उठाई है। एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? द्रव्य गुण पर्याय को जानने से भेद ज्ञान होता है, ये रिलेशनशिप है। द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना भेद ज्ञान तीन काल में नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप है। इसलिए हमने ये जो अपना ये बनाया है, देखो इसके इसका हेडिंग भी दिया ना, द्रव्य गुण पर्याय को जानने के संदर्भ में। आप इसको उपाय कह सकते, द्रव्य गुण पर्याय को जानने का उपाय नहीं, द्रव्य गुण पर्याय को जानने का प्रयोजन। द्रव्य गुण पर्याय का को जानने में आचार्यों ने जो मेहनत लगवाई है, जो मेहनत लगवाई है ना कि तुम द्रव्य को जानो, गुण को जानो, पर्याय को जानो, ऐसे छह द्रव्य हैं, उनके ऐसे अनंत अनंत गुण हैं, कुछ सामान्य गुण हैं, कुछ विशेष गुण हैं, उनकी पर्याय होती है, अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय होती है, ऐसी पर्यायों के अनेक भेद हैं। तो ऐसे जो ये भेद प्रभेद करके द्रव्य गुण पर्याय के, ये जो हमको इतनी डिटेल में उसकी जानकारी कराई है, आखिर आचार्यों ने इतनी मेहनत क्यों करवाई हमारे से? उनको हमको परेशान करने में अच्छा लगता है क्या? द्रव्य गुण पर्याय को जानो, द्रव्य गुण पर्याय को जानो, बोलो इतनी मेहनत क्यों करवाई है? वो मेहनत इसलिए कराई है कि यदि तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानोगे तो तुमको भेद ज्ञान नहीं हो सकता, और भेद ज्ञान नहीं हो सकता तो उसके पीछे की बहुत कहानी है। सारे जो इसमें हमने सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों में आपको एक एक बात का, इसमें जो भी ग्रंथ के आधार पर जो भी बात आई है उसमें आपको एक एक बात का मतलब, देखो इसमें पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये आप थोड़ी ये व्याख्या में देखना भाई साहब, व्याख्या डिटेल व्याख्या में देखना। पहला सूत्र आप इसमें भी दिखा सकते हो, नहीं तो इसमें भी आ रहा है, भेद ज्ञान ही द्रव्य गुण पर्याय को जानने का प्रयोजन है। देखना इसमें बहुत अंतर पड़ जाएगा यदि हम इसमें ये कहें कि द्रव्य गुण पर्याय को जानने का उपाय भेद ज्ञान है। किरीट भाई, दूसरा वाक्य है द्रव्य गुण पर्याय को जानने का प्रयोजन भेद विज्ञान है। बोलो दोनों में से कौन सा वाक्य सही? द्रव्य गुण पर्याय को जानने का उपाय भेद ज्ञान है या द्रव्य गुण पर्याय को जानने का प्रयोजन भेद विज्ञान है? द्रव्य गुण पर्याय को जानने का उपाय नहीं है, ये बोल सकते हो क्या कि द्रव्य भेद ज्ञान का उपाय क्या है? तो द्रव्य गुण पर्याय को जानना, आचार्य ने इसको इतना मैंने टाइट किया है। फिर बाद में ऐसा प्रश्न किया प्रश्नकार ने कि मैं द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानूं, मैं द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानूं? अरंत को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? हाँ जान सकता हूं साहब। तो अरंत के द्रव्य जान, अरंत के गुण जान, अरंत की पर्याय जान, और उनके समान अपनी आत्मा को जान, तो अपनी आत्मा के द्रव्य को जान, अपनी आत्मा के गुण को जान, अपनी आत्मा की पर्यायों को जान, और बता अंतर, बता अंतर उनके द्रव्य गुण पर्याय में और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। पहला टीका का पहला वाक्य है कि उनके द्रव्य गुण पर्याय में और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं है। इसकी अपन ने थोड़ी विस्तार से चर्चा कल की थी, वो आप उसको ध्यान देना। बहुत सारे पॉइंट बताए थे, द्रवगुण पर्याय, उनके द्रवगुण पर्याय, अपने द्रवगुण पर्याय में कैसे, पर्याय में भी समानता कैसे बनती। वो जो एक प्रकरण आपको बताया था, हमारे रजनी भाई बाद में पूछते थे, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्याय आर्थिक में, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय भी है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहता है कि सर्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, कि सब आत्माएं, सब संसारी आत्माएं, आत्माएं शुद्ध के समान है। मैंने यहाँ आत्मा का, आत्मा को समानता बताई, आत्मा की मैंने द्रव्य की समानता बताई। लेकिन कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्याय आर्थिक नय से संसारी जीव की पर्याय भी, सिद्ध भगवान की पर्याय के समान है। कौन से नय से? नय ध्यान देना, नय ध्यान देना। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्याय आर्थिक नय से, कर्मोपाधि सापेक्ष पर्याय आर्थिक नय से बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और पर्याय का ही नहीं, वहां द्रव्यार्थिक में भी ऐसा है। कर्मोपाधि सापेक्ष यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय को देखोगे, द्रव्यार्थिक नय कह रहे, तो द्रव्य में भी अंतर है। अभी हमने तो ऐसा थोड़ा बंटवारा करके देख लिया कि द्रव्य गुण से कोई अंतर नहीं है और पर्याय से अंतर है, ये हमने ऐसा बंटवारा कर दिया। लेकिन वास्तव में आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय भी यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो अंतर है, और पर्यायार्थिक नय में भी अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से देखोगे तो अंतर है। लेकिन यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो अंतर नहीं है, द्रव्य में भी और गुण में भी, और शुद्ध पर्यायार्थिक नय से भी देखोगे तो भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे अंतर बनता है, जिसके कारण अंतर उनमें और हमारे में आता है, हमने उसको जड़ से खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? क्यों? क्योंकि ये कर्मोपाधि के कारण उनमें और मेरे में अंतर है। ये कर्म की उपाधि मेरे में कर्म का उदय है, इसलिए मेरे को राग होता है, मैं संसारी हूं, मैं चतुर्गति में भ्रमण कर रहा हूं। ये कर्म के ही तो सब खेल हैं, सारे कर्मों के खेल हैं, और उन्होंने इन कर्मों का नाश कर दिया, वो सिद्ध अवस्था में जाकर के विराजमान हो गए। ये कर्म की उपाधि का ही चक्कर है कि वो सिद्ध हैं और मैं संसारी हूं, उनके कर्म की उपाधि नहीं है, उनका क्षय हो गया कर्म की उपाधि का, और मेरे को कर्म की उपाधि से कर्म का उदय है, इसलिए मैं और उनमें, मैं औदयिक भाव में हूं, वो क्षयिक भाव में है, अंतर है, ये कर्म की उपाधि के कारण। लेकिन यदि ये कर्म की उपाधि को निकाल करके देखे तो कर्म की उपाधि के बिना देखें तो, मैंने उनको कर्म के क्षय से देखना, सुनना, सिद्ध भगवान को कर्म के क्षय से देखना, ये कर्म की उपाधि है या कर्म की उपाधि के बिना है? क्षय से देखने में भी, क्षय से देखने में उपाधि है, और उनको भी कर्म की उपाधि के बिना देखो, और मुझे भी माने संसारी आत्मा को भी कर्म की उपाधि के बिना देखो, तो दोनों की क्या बोलो पर्याय में भी अंतर नहीं है। कर्म की उपाधि के बिना देखो, जय बद्धौ मुक्तौ मुनौ, जो आत्मा को बंधा हुआ या मुक्त हुआ मानता है, सो बंध यंतु निभंतु, वो निश्चित रूप से बंधता है। जो आत्मा को बंधा हुआ मानता है अथवा बंधा हुआ मानता है अथवा मुक्त मानता है, अनादि मुक्त नहीं मानता है, अनादि मुक्त नहीं मानता है, ये वर्तमान अवस्था से उसको बंधा हुआ मुक्त हुआ मानता है, सो बंध यंतु निभंतु, वो निश्चित रूप से बंधता है। तो कौन छूटता है बंधन से, कौन छूटता है? ये कर्म, उसमें भी नियम सार में भी एक गाथा है, कर्मोपाधि विभज्यम, ऐसा कोई श्लोक है, गाथा श्लोक है शायद, कर्मोपाधि विभज्यम, कर्म की उपाधि के बिना देखो। देखो इसको मैं और दूसरे आपको बताता हूँ, ज्ञान, हाँ हाँ, कर्मोपाधि विभज्यम, ज्ञान को आप शुद्ध ज्ञान से देखो, शुद्ध ज्ञान से, केवल ज्ञान से नहीं, सामान्य ज्ञान से देखो। आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है और जानना उसकी पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय खत्म। क्या बोला? आत्मा एक द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है और उस ज्ञान गुण की जानने रूप पर्याय होती है, शुद्ध है, शुद्ध। मैं कम जानता हूं, वो ज्यादा जानते हैं, तुम अशुद्धता से देख रहे हो। मेरे में मति शुद्ध ज्ञान है इसलिए मेरा ज्ञान अल्प है, उनके पास में केवल ज्ञान है इसलिए वो सारे लोकालोक को जानते हैं। ये पर्याय को जानने की पर्याय को भी आप अशुद्धता से देख रहे हैं। ये आपने उपाधि मिक्स कर दी, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, ये जो कम ज्यादा है ये उपाधियां हैं, ये कर्मोपाधि निर्मित है। मैं भी जानने वाला हूँ, वो भी जानने वाले हैं, उनमें भी ज्ञान गुण है, मेरे में भी ज्ञान गुण है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, निगोदिया भी जानता है, मैं भी जानता हूँ और सिद्ध भगवान भी जानते हैं। इस जानन 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 पर्याय से देखो। इसको कारण ज्ञान भी कह सकते हो आप, जानन जानन जानन। इसलिए तो नियम सार को, इस जानन जानन को समझाने के लिए, ये जानना 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 जानना, इसको समझाने के लिए नियम सार को भी इसको पर्याय नाम देना पड़े। कारण ज्ञान पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय। ये कारण शुद्ध पर्याय, जानन जानन जानन, ये कारण शुद्ध पर्याय है ज्ञान की। और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कार्य शुद्ध पर्याय है ज्ञान की। और कर्म की उपाधि जो आती है वो ये कार्य पर्यायों में आती है, और कर्म की उपाधि वो जो कारण शुद्ध पर्याय है, हरेक 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 गुण की भी अलग अलग कारण शुद्ध पर्याय, वो कारण शुद्ध पर्याय वो कर्मोपाधि विवज्यम, कर्मोपाधि से वो रहित है। कोई दिक्कत नहीं है, उत्पाद वाली पर्याय, उत्पाद वाली, उत्पाद व्यय वाली पर्याय भी कर्मोपाधि से रहित दे तो समान है। कर्मोपाद जो उत्पाद व्यय सहित वाली पर्याय है उसको भी दो प्रकार से देखो, एक उसको कर्मोपाधि से सहित देखो और कर्मोपाधि से रहित देखो। गुरुदेव की भाषा में कहें तो ये जो कर्मोपाधि से सहित पर्याय है और कर्मोपाधि से रहित पर्याय है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। सुबह वाली बात क्या है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्यों? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उनमें आधार आधेय संबंध नहीं होता है। क्या बात है, देखना। इसको उत्पाद व्यय वाली पर्याय को भी कह रहा हूं मैं, उत्पाद व्यय वाली पर्याय को, उत्पाद वाली पर्याय, उत्पाद व्यय वाली पर्याय ही पर्याय है। और देखो इसको इसको बहुत गहराई से अभी चलो अपन जो है द्रगुण पर्याय की लाइन पे जा रहे हैं। अपने को कहाँ जाना है? भेद ज्ञान की लाइन पे आना है, भेद ज्ञान की लाइन पे। माने ये द्रगुण पर्याय को जानने का प्रयोजन क्या है, देखना इसको एक और बहुत सटीक जो डॉक्टर साहब भी सुबह उसका इशारा कर रहे थे। वास्तव में क्या है, हमको भेद ज्ञान करना ये हमारा मोटो है। भेद ज्ञान करना हमारा मोटो है। ये द्रवगुण पर्याय को भी वास्तव में ऐसे जानो। क्या बोला? ध्यान देना थोड़ा बात को। द्रवगुण पर्याय को ऐसे जानो, ऐसे जानो जिससे भेद ज्ञान पुष्ट हो। ऐसे मत जानो, ऐसे मत जानो जिससे आपका भेद ज्ञान का कार्य सधे नहीं, भेद ज्ञान का प्रयोजन सधे नहीं। सब द्रव्य भिन्न भिन्न है क्या? नहीं। कल बताया था मैं, सब द्रव्य भिन्न भिन्न है क्या? नहीं। तो ये उल्लास भाई, ये पंकज भाई अलग अलग है क्या? नहीं। दो द्रव्य हैं तो अलग अलग है क्या? नहीं। इसका नाम भेद ज्ञान है? होंगे। ये हमको जो है ऐसा भेद ज्ञान करते जाएंगे, ऐसा दुनिया का भेद ज्ञान करते जाएंगे तो इससे कोई मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो जाएगी। इसलिए बहुत ऐसा विवेक किया है, देखना कैसा विवेक किया है, सबका अभेद कर दिया। भेद ज्ञान कर रहे हैं, भेद ज्ञान कर रहे हैं और सबका अभेद कर दिया। कैसे? मैं स्व और बाकी सब भेद ज्ञान है कि अभेद ज्ञान है? भेद ज्ञान है कि अभेद ज्ञान है? स्व पर में तो भेद ज्ञान है और पर में ये पंकज भाई नहीं है, ये पर हैं। ये उल्लास भाई नहीं है, ये पर हैं। तो ये दोनों एक ही हैं क्या? अब मेरे लिए तो अभेद ज्ञान करो, पर का अभेद ज्ञान करो और स्व पर का भेद ज्ञान करो, क्योंकि उसके उसमें कुछ मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। अच्छा और देखो, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, आत्मा में अनंत गुण है, बोलो वो सब भिन्न भिन्न है क्या? नहीं। गुरुदेव के प्रवचन में एक प्रश्न पर बात आई थी ना, वो राग और वीतरागता, मैंने संवर और आश्रव, इनके जब प्रदेश भेद की चर्चा आई तो एक प्रश्न किया था किसी भाई ने कि इनमें अत्यंता भाव है या तद्भाव है? तद्भाव है, अतद्भाव है? बोलो क्या बोला गुरुदेव ने? क्या भाव? क्या बोला गुरुदेव ने? मैंने गुरुदेव कहाँ बैठे रहते थे और वो कहाँ बैठ करके जवाब देंगे? इसको जो है उनके साथ में बैठना पड़ेगा। जहाँ बैठ करके वो जवाब दे रहे हैं वहाँ तुम बैठो तो वो जवाब निकलेगा। मैंने ये आत्मा का ही एक राग पर्याय है और इसी आत्मा की एक ज्ञान पर्याय है, ये आत्मा की ही आश्रव पर्याय है, ये आत्मा की ही संवर पर्याय है, ये दोनों पर्याय आत्मा की है ना, वो चारित्र गुण का विकार है, ये चारित्र गुण का अविकार अवस्था है और मुख्य मार्ग में दोनों साथ साथ भी चलते हैं, ज्ञान धारा और राग धारा, कर्म धारा, ये एक साथ साथ भी चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों में बोलो क्या अंतर माने, कौन सा अभाव माने? अरे अत्यंत अभाव तो दो द्रव्यों के बीच में होता है भाई, अत्यंता भाव तो दो द्रव्यों के बीच में होता है। इसके बीच में दो द्रव्यों की बीच, दो द्रव्यों जैसा भेद है क्या? बोलो दो द्रव्यों जैसा भेद है क्या? दोनों में अत्यंता भाव तब माना जाता है कि जब दोनों में प्रादेशिक भेद हो, दोनों के प्रदेश अलग अलग हो तो अत्यंता भाव माना जाता है। तो ये गुरुदेव को पता नहीं था कि ये तो एक ही द्रव्य के, एक ही गुण की, एक ही द्रव्य, द्रव्य भी एक, गुण भी एक और उसकी ये दो पर्याय हैं। और उनमें प्रदेश भेद है, ये गुरुदेव को पता नहीं था कि प्रदेश भेद होता है तभी अत्यंता भाव होता है। तो गुरुदेव मालूम क्या बोल रहे, बोले हाँ इनमें अत्यंता भाव है। तो क्या इनमें प्रदेश भेद है? हाँ इनमें प्रदेश भेद है, क्योंकि तू अत्यंता भाव तभी मानेगा ना। तुम अत्यंता भाव तभी मानोगे जब इनमें प्रदेश भेद है। तो ये आचार्य कह रहे आज, और गुरुदेव को अपनी तरफ से कहने ही कहाँ पड़ा, गुरुदेव अपनी तरफ से कह रहे एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती क्योंकि इनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। वो एक वस्तु दूसरी वस्तु में भिन्नता तभी होगी। अच्छा बताओ, ये जो 181 व्यासी त्रासी गाथा है, इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती ऐसा जो कहा गया है, इसमें एक वस्तु क्या है और दूसरी वस्तु क्या है? एक वस्तु क्या है और दूसरी वस्तु क्या है कि जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है, ये आचार्य कह रहे हैं। एक वस्तु आश्रव एक वस्तु है, दूसरी वस्तु क्या है? संवर, वो दूसरी वस्तु है। उसको अपने उदाहरण के रूप में कहें तो एक का उदाहरण दिया है क्रोध, दूसरे का उदाहरण दिया है उपयोग। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। और इसकी टीका लिख रहे हैं, तो एक टीका कितनी प्यारी टीका लिखी है संस्कृत का, ये हिंदी है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, संस्कृत में तो इतना सा लिखा है, क्या लिखा, नहीं एकम द्वितीयम अस्ति, नहीं एकम द्वितीयम अस्ति, जो एक होता है वो दूसरा नहीं होता। जो एक होता है वो दूसरा नहीं होता। तो अब इस एक माने क्या, एक माने क्या, तो उन्होंने उसका हिंदी करते समय उसमें वस्तु शब्द और जोड़ दिया, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं होती। तयोर प्रदेश भिन्नत्वात्, और उनके क्यों नहीं होती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। देखना ये बहुत कमाल है, कमाल। मैं तो ये जो है ना, मैं राजकोट गया था भाई साहब, वो एक बार परिसर में गया था ना, तो उस समय अपने ऊपर वजू भाई वाचन करते थे, तो मैं, हमारा व्याख्यान पूरा हो गया, क्या हुआ तो मैं फ्री था, तो मैं ऊपर जाके बैठा, तो वहां पर यही गाथा चल रही थी, और वहां पर ये 181 व्यासी त्रासी गाथा चल रही, उनका व्याख्यान चल रहा था, और गुरुदेव का सामने, गुरुदेव का ही पढ़ते थे ना, तो गुरुदेव का किताब थी, और वहां ये मैंने यहाँ, वहां मेरा ध्यान क्लिक हुआ था कि ये यहाँ तो इसमें अत्यंता भाव कह रहे, दो द्रव्यों के बीच में जो अत्यंता भाव होता है, यहाँ पर ये दो तत्वों के बीच में कह रहे हैं। अत्यंता भाव की भी परिभाषा ये नहीं है कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होता है, अत्यंता भाव तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, बस ये अत्यंता भाव का चिन्ह है। वो एक वस्तु कोई भी हो सकती है, दो द्रव्यों के बीच में भी अत्यंता भाव, दो पदार्थों के बीच में भी अत्यंता भाव, दो अस्तिकायों के बीच में भी अत्यंता भाव, दो तत्वों के बीच में भी अत्यंता भाव। ये दो तत्वों के बीच में जो अत्यंता भाव होगा, ये तात्विक अत्यंता भाव है। दो द्रव्यों के बीच में जो अत्यंता भाव है, ये द्रव्य रूप अत्यंता भाव है। दो पदार्थ अस्त्र, और गुरुदेव ने इस बात पर वजन दिया था, मालूम आपको क्या बात पर वजन, क्या कहा है, देखो यहाँ क्या कहा है, यहाँ पर आश्रव को वस्तु कहे थे, ऐसा ये गुरुदेव के शब्द हैं। आश्रव को भी है तो पर्याय, आश्रव तो पर्याय है, संवर तो पर्याय है, लेकिन उसको पर्याय नहीं कह करके यहाँ उसको भी क्या कहा, उसको वस्तु कहे थे। देखो वस्तु कहे थे, तो दो वस्तुओं के बीच में तो अत्यंता भाव मानना ही होगा, ये तात्विक अत्यंता भाव है, तात्विक अत्यंता भाव।
फिर वो असद्भाव वाली बात क्या है?
असद्भाव वाली बात क्या है?
असद्भाव वाली बात मालूम क्या है? जो आश्रव तत्व है और जो संबर तत्व है, उन दोनों के बीच में तो अत्यंत अभाव, फिर इनका इसमें जो असद्भाव है वो क्या घटेगा? यहाँ असद्भाव घटाओ, सब असद्भाव घटाओ। मैं बताऊं, ये जो आश्रव है ना, इसके बहुत सारे गुण हैं। गुण दुर्गुण कहो चाहे गुण कहो, है तो गुण। आश्रव के बहुत सारे गुण हैं। बोलो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताए थे, क्या 72 गाथा समय साल की, असुचिपना, विपरीतता, ये आश्रवों का जान के अनुबंध कारण जान के इनसे निवर्तन। गाथा में क्या है? नहीं, वो तो है मूल गाथा। गाथा क्या है? 72वीं गाथा की, नादून आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस्य कारणंति। तीन गुण बताए इसके, तीन गुण बताए। कौन से तीन गुण? असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस्य कारणंति। किरीट भाई बोलो, असद्भाव किसमें है? इसका असद्भाव, ये जो आश्रव के तीन गुण बताए हैं ना, इन तीन गुणों में परस्पर असद्भाव है। क्या बोला? ये जो तीन है ना, एक दुख का कारण बताया, एक विपरीत बताया, एक असुचि बताया, तो ये असुचि और विपरीतता एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, लेकिन है दोनों आश्रव की, इसलिए उनका आश्रव जो है ये पदार्थ है। इसको पदार्थ भी नाम दिया ना आचार्यों ने, गुरुदेव वस्तु कह रहे, और हमारे पूरा जिनागम ये नौ तत्वों को नौ तत्व भी कहता है और नौ पदार्थ भी कहता है। बोलो, अब पदार्थ कह दिया, वस्तु में क्या फर्क रहेगा? पदार्थ और वस्तु में क्या फर्क रहेगा? पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, इनको मिक्स करके देखना ही नहीं, बिल्कुल भेद है। एक में हो साथ मरी, क्या हो गया इसमें? एक साथ होने से क्या दिक्कत है? एक साथ होने से क्या हो जाता है? एक साथ होने से सब चीजें एक हो जाती हैं क्या? ये शरीर और आत्मा भी एक साथ है, इनका भी एक क्षेत्राव का है संबंध का ना, व्यवहार में से इनका भी क्षेत्र एक बताया गया है। भाई साहब, एक क्षेत्राव का है संबंध, हम बोल ही रहे एक क्षेत्राव का है, जो एक क्षेत्र में रहते हैं, शरीर भी उसी क्षेत्र में रहता है, आत्मा भी उसी क्षेत्र में रहता है, एक क्षेत्र होगा तभी तो बनेगा ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये आकाश का क्षेत्र है, और उस आकाश के क्षेत्र में ही जीव रह रहा है, और उसी आकाश के क्षेत्र में पुद्गल रह रहा है, एक क्षेत्र होगा ऐसा। लेकिन उसके बाद भी जब हम द्रव्य दृष्टि से विचार करते हैं, तो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो जीव के प्रदेश भिन्न है और पुद्गल के शरीर के प्रदेश भिन्न है। कैसे जाना आपने? हमको तो एक ही जगह दिखते हैं, अलग अलग कैसे जाना? आगम में दो द्रव्य कहे, दोनों के प्रदेशों में भिन्नता कही है। दोनों के प्रदेश कैसे कहे? आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात प्रदेश कहे, ये जो शरीर है, इस शरीर के जो प्रदेश है, ये अनंत प्रदेश है। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, और एक एक पुद्गल परमाणु का एक एक प्रदेश, ऐसे ये अनंत प्रदेश ही है शरीर, आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है। भेद हो गया कि नहीं? और ये भेद होने के बाद भी असली बताऊं, असली भेद क्या है? असली भेद, आत्मा के प्रदेश चैतन्य 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 रूप प्रदेश है, और शरीर के प्रदेश जड़ 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 रूप प्रदेश है, इसलिए इनमें अत्यंत अभाव है। अब यही बात यहां घटाओ पदार्थों में, आश्रव पदार्थ और संवर पदार्थ, इनमें अत्यंत अभाव है, क्योंकि इनके भी प्रदेश अलग अलग हैं। क्या अंतर है दोनों के प्रदेशों में? बोलो, क्या अंतर है दोनों के प्रदेशों में? ये जो आश्रव के प्रदेश हैं, वो दुख दुख दुख, उसकी जो उसमें से आती है क्या आता है उसमें से दुख दुख दुख, और संवर के प्रदेशों में से क्या झरता है? अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद झरता है उसमें से, उसके प्रदेशों में से, और इसके प्रदेशों में से कहां भूमि बरसत दुख ईशो बीछू सहस। जैसे नरकों के प्रदेश है ना, कहां भूमि बरसत दुख ईशो, ऐसे ये जो आश्रम के प्रदेश है ना, कहां भूमि पर कहां क्षेत्र कहां प्रदेश, उसके प्रदेश को बरसत दुख ईशो, उसके प्रदेशों को स्पर्श करने से ही आश्रव, दोनों के दोनों में ही अत्यंत अभाव। लेकिन वो आश्रव के प्रदेश दुख रूप भी हैं, विपरीत भी हैं, असुचि भी हैं, है ना? तो इन तीनों में क्या अंतर है? तो इनमें असद्भाव है। दुख गुण की बात अलग है, विपरीतता की बात अलग है, असुचिता की बात अलग है, इनको अंतर बताएंगे। तो ये जो अंतर है ये अताद्भावित या असद्भाव वाला, इसमें अंतर है। जैसे गुणों में, द्रव्यों में हम कैसे अंतर करते हैं? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव। अब एक द्रव्य के जो अनंत गुण हैं, एक द्रव्य के जो अनंत गुण हैं, वो आत्मा के ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, तो ये ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बीच में असद्भाव। ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बीच में है एक साथ, लेकिन उनको असद्भाव, माने इनके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे ही जो असुचि आश्रव है और जो विपरीत आश्रव है और जो दुख का कारण आश्रव है, ये तीन कहे गए हैं, इन तीनों के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन आश्रव के प्रदेश और संवर के प्रदेश भिन्न भिन्न। इसको बहुत तात्विक दृष्टि से ही देखना होगा, इसको तात्विक दृष्टि से, इसके भी माने है तात्विक बात, तात्विक बात, तत्व माने भाव होता है, तत्व भाव तत्व भाव होता है, लेकिन वो भाव जुदे जुदे बताते हुए भी आचार्य कह रहे हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का नहीं होता, उनके प्रदेश भिन्न भिन्न, माने वहां पर उन्होंने द्रव्य भेद भी कर दिया, एक वस्तु दूसरी वस्तु, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ, दो पदार्थ बता दिए। इसी प्रकार से उनमें क्षेत्र भेद भी कर दिया, उसके प्रदेश भिन्न है, इसके प्रदेश भिन्न है, ऐसे ही उनके काल भी भिन्न है। क्या काल भी भिन्न है? आश्रव का काल भिन्न और संवर का काल भिन्न। हम काल कहते हैं लेकिन स्वकाल को नहीं देखते, हम काल कहते हुए भी वो काल द्रव्य की पर्याय, एक ही समय में तो है दोनों, एक ही समय में तो है दोनों, एक ही समय में तो है। आश्रव और संवर का काल अलग अलग है क्या? ये काल आप काल द्रव्य का काल देख रहे हो, वो समय वाला स्वकाल, आश्रव की पर्याय ये उसका स्वकाल, संवर की पर्याय उसका स्वकाल, इनका काल भी अलग अलग है, ये दोनों पर्याय अलग अलग है। भले ही एक संयुक्त रूप से एक पर्याय के अंदर रहते हैं, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में ये दोनों पर्याय गर्भित हैं, लेकिन अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, काल अलग अलग है। तो क्या अलग अलग हो गया बोलो? पदार्थ भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद और भाव भेद बताने की जरूरत है? अरे भाव भेद नहीं तो ये सारे चारों भेद खड़े किए, उनमें तात्विक भेद था, वो चारों खड़े करने का रीजन ही ये है कि उसमें उसके आधार पर एक द्रव्य एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, उसी के आधार पर उनके प्रदेश भिन्न, उसी के आधार पर उनके काल भिन्न, और उसके उसका आधार ही है वो भाव भेद उनमें है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अपेक्षा उसमें भेद है, चारों की कोई लेना देना नहीं। वो आश्रव संवर का दुश्मन, संवर वो आश्रव का दुश्मन, दोनों एक क्षेत्र में कैसे रह सकते हैं? क्या बोला? दो भाइयों के आपस में झगड़े हों तो वो साथ में नहीं रह सकते? ये तो कट्टर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और तुम कह रहे हो कि आश्रव और संवर दोनों को रहना एक ही जगह पड़ेगा, एक ही जगह रहना पड़ेगा। बोलो,
ये आश्रव बलवान हो जाता है तो ये संवर को खत्म कर देता है, और जब संवर बलवान हो जाता है, आज गुरुदेव ने प्रवचन में बोलते बोलते ये संवर को सादी अनंत कहा, संवर को सादी अनंत कहा, क्या अपेक्षा से कहा, संवर सादी अनंत होता है, संवर सादी अनंत होता है, संवर तो सादी शांत है, तो सादी अनंत क्यों कहा। गुरुदेव ने उसको तुरंत उसको राइट आउट किया, कैसे राइट आउट राइट किया, बोले ये संवर में सम्यक दर्शन है क्या नहीं, ये संवर सम्यक दर्शन से तो संवर का प्रारंभ हुआ, तो ये संवर में सम्यक दर्शन है, और ये सम्यक दर्शन एक छाईक सम्यक दर्शन रूप होता है, और वो छाईक सम्यक दर्शन सादी अनंत होता है, इस अपेक्षा से वो संवर भी सादी अनंत हो गया। क्या बात है, उसी समय एक ही वाक्य में पहले उन्होंने सादी अनंत कहा, और उसमें संकित है ना, उसमें संकित है ना, संकित अपेक्षा है, वो सिद्धों में भी संकित है, सिद्धों में संवर नहीं हो भले ही संवर नहीं है सिद्धों में, लेकिन वहां पर वो संवर का बेटा सम्यक दर्शन बैठा हुआ है, इसलिए वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वो सादी अनंत है, तो संवर को ऐसा बोलो गुरुदेव के मुंह से निकला सादी अनंत, मुंह से निकल गया उसको भी सिद्ध कर दिया क्या बात है। ऐसा ये जो है ये भेद ज्ञान का प्रकरण, इसमें द्रवगुण पर्याय को जानने का प्रयोजन, द्रवगुण पर्याय को जानने का प्रयोजन भेद ज्ञान, देखो वास्तव में भेद ज्ञान ही द्रवगुण पर्याय को जानने का प्रयोजन है, क्योंकि द्रवगुण पर्याय को जाने बिना पदार्थों के भिन्न भिन्न स्वरूप को सम्यक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, और उनकी भिन्नता को जाने बिना कौन स्व है और कौन पर है इसका सम्यक विवेक भी नहीं हो सकता है, तथा स्व पर का यह सम्यक विवेक ही भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान का दूसरा नाम है ये, विवेक कहो सम्यक ज्ञान कहो, क्या बोला सात उपाय ऐसा नाम, स्वपर विवेक बखानो, स्वपर विवेक बखानो, तो ये स्वपर का विवेक कहो, भेद ज्ञान कहो, और ये सारी बात विवेक कहो, सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो ये भेद ज्ञान को जो है यहाँ पर उन्होंने द्रवगुण पर्याय से जोड़ा, और दूसरा एक उसके बाद में एक पॉइंट और लिया है एक सूत्र में, द्रवगुण पर्याय को कैसे जाने, आचार्य ने पूछा द्रवगुण पर्याय को कैसे जाने, तो अनंत का एक मैंने आपको उदाहरण दिया, दूसरा मालूम क्या पूछा, बोले नहीं साहब आप तो कोई उपायांतर बताओ, आप तो कोई उपायांतर बताओ, तो 86 गाथा में कहा कि तेरे को द्रव्यमान पर्याय जानना है ये तो कंपलसरी है, अरंत से जान ले तो ठीक, और यदि अरंत के द्वारा नहीं जान पा रहा है तो आगम का अभ्यास कर, पढ़ो जिनागम खोलो, आगम का अभ्यास करो, और उसके द्वारा द्रवगुण पर्याय को जानो, द्रवगुण पर्याय को जाने बिना तुझे भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, और भेद ज्ञान के बिना तेरे मोह का नाश नहीं हो सकता। उसका बहुत लंबी रामायण है एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, इसको 5-7 पॉइंट में हम इसको कनेक्टिविटी देख सकते हैं इनकी, वो क्या होगा, भेद ज्ञान को बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाए, उसके पीछे में जाए, उसके आगे जाए, ऐसा भेद ज्ञान के स्वरूप को हम समझें, तो इसके माध्यम से हम उसके क्या क्यों और कैसे तक पहुंच सकते हैं उसकी विस्तार से और चर्चा फिर अपन करेंगे।